अयि मित्रगणाः, अभिवादनं व्याहरामि, स्वागतं च करोमि। आगच्छन्तु। रेडियो मधुबनस्य श्रव्यमञ्चे अहं लीना मेहेन्दळे उपस्थिता अस्मि। अद्य अपि वयं वैदिकगणितं पठिष्यामः। अयि मित्रगणाः, एकम् अतीव उपयुक्तं सूत्रं वर्तते, ऊर्ध्वतीर्यक्सूत्रम् इति। द्वाभ्यां संख्याभ्यां गुणनफलप्राप्त्यर्थम् इदं सूत्रं प्रचलितम्। आगच्छन्तु, पठिष्यामः वयम्। अर्थात्, हे मित्रगण, सबका अभिवादन है, स्वागत है रेडियो मधुबन के श्रव्य मंच पर। मैं लीना मेहेंदळे उपस्थित हूँ और आज भी हम वैदिक गणित को ही पढ़ेंगे। आज हम लोग एक अतीव उपयुक्त सूत्र है, ऊर्ध्वतीर्यक सूत्रम, उसे पढ़ेंगे। जब दो संख्याओं का आपस में गुणनफल अर्थात गुणाकार निकालना हो, तब यह सूत्र अति उपयोगी है। तो मित्रों, ये कुछ मैं प्रयास कर रही हूँ, जो अपनी पुरातन संस्कृति है, जो वेदों से आरंभ होती है, बल्कि वेदों से भी पहले से आरंभ होती है, लेकिन वेद काल में ही हमने गणित में कितनी प्रगति की थी, इसकी एक झलक हमें इन वैदिक सूत्रों से मिलती है। तो आज का वैदिक सूत्र है हमारा ऊर्ध्वतीर्यक सूत्र। इसे समझाने के लिए मैं प्रायशः हिंदी ही भाषा का प्रयोग करूंगी, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। क्या कहता है ये ऊर्ध्वतीर्यक सूत्र? ऊर्ध्व अर्थात ऊपर या ऊपर वाला, तिर्यक अर्थात तिरछा या जो तिरछे में हो। तो यह सूत्र यही बताता है कि जब गुणनफल निकालना हो तो एक बार ऊर्ध्व का गुणन करो और फिर तिरछे का भी गुणन करो, और इस तरह से संख्या का गुणनफल निकालने की यह विधि है। और इस सूत्र से चाहे कितनी भी लंबी संख्या हो, उनका गुणनफल आराम से निकल जाता है। अगर कभी आपने श्रीमती शकुंतला देवी के वीडियो देखे हों, जब वो दो संख्याओं का गुणनफल आराम से और बड़ी ही सहजता से और बड़े ही कम समय में निकाल दिया करती थी, तो लोग आश्चर्य से मुंह में उंगलियां दबा लेते थे। लेकिन ऐसी ही विधि आप भी सीखेंगे तो आप भी गुणनफल के गणित को बहुत सरलता से पूरा कर सकेंगे। और कहीं अगर आपने बहुत अधिक मेहनत से इस विधि को अनेकों बार साध लिया, 100 बार 200 बार 500 बार इसे कर करके साध लिया, तो आपकी भी गति इतनी तीव्र हो जाएगी कि आपका यह वेग, आपकी यह गति देखकर लोग आपको भी जादूगर समझने लगेंगे। आपके गणित के वेग से भी लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। तो चलिए, जादूगर बनना छोड़ सकते हैं हम, लेकिन गणित को सीखना हम नहीं छोड़ेंगे। आसान सी विधि है, पहले हम इसे दो अंकों वाली संख्या लेकर के समझते हैं। मान लीजिए हमारा एक अंक है 76 और दूसरा अंक है 45। तो ऊर्ध्वतीर्यक पद्धति यह कहती है कि निचली संख्या के एकम के स्थान पर जो अंक है, पहले वहाँ से आरंभ करो। जब उसका काम समाप्त हो जाए तो दशम स्थान की संख्या से आरंभ करो। जब उसका भी काम समाप्त हो जाए तो शतम वाली, फिर सहस्र के स्थान पर आने वाली, इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन अभी तो हम केवल 76 और 45, इस प्रकार दो ही अंकों वाली संख्या को देख रहे हैं। तो पहले ऊर्ध्व अर्थात 5 में 6 से गुणा करेंगे तो गुणनफल हुआ 30। उसमें से हम शून्य को लिखेंगे और 3 को हाथ में रख लेंगे। अब अगला है तिर्यक। तो तिर्यक में 5 को 7 से गुणा करना है, क्योंकि 5 और 7 एक दूसरे के तिरछे तिरछे पड़ते हैं। और इधर 6 को भी 4 से गुणा करना है, क्योंकि 6 ऊपरी पंक्ति में एकम स्थान पर है और उसके तिर्यक अर्थात तिरछे स्थान पर नीचे 4 है। तो जब हम ये गुणाकार करते हैं तो 6 चौके 24 और 7 पंचे 35। इन दोनों का हम मन ही मन जोड़ कर लेंगे और वह जो तीन हाथ में रखे थे उसे भी मिला देंगे। तो यह जोड़ हो गया 35 अधिक 24 अधिक 3 तो 62। इसमें से दो को तो हमने उत्तर के दशम स्थान पर लिख लिया और 6 को हाथ में रख लिया। अब फिर से ऊर्ध्व करते हैं, अर्थात 4 में 7 से गुणा करते हैं, तो 4 सते 28 और 6 34। इस प्रकार हमारा उत्तर आया 3420 अर्थात 3420। अब इससे आगे चलते हुए हम तीन अंकों वाली दो संख्याएं लेंगे। मान लो हमारी संख्याएं हैं 517 गुणे 328। तो यहाँ भी पहले हमने ऊर्ध्व अर्थात 8 को 7 से गुणा कर दिया, तो 8 सते 56, इसमें से हमने 6 लिखे और 5 हाथ में रख लिए। अब उत्तर के दशम स्थान पर जो अंक आने वाला है उसे खोजने के लिए हम केवल एकम और दशम स्थानों का विचार करेंगे। अभी शतम के जो अंक हैं उन्हें थोड़ी देर के लिए अलग छोड़ देंगे। तो अब हम विचार कर रहे हैं तिर्यक का। तो तिर्यक गुणाकार के लिए हम 8 को गुणा करेंगे 1 से, तो 8 के 8, और 7 को गुणा करेंगे 2 से, तो 7 दुने 14, 14 और 8 हुए 22, और हमने हाथ में 5 रखे थे उसको जोड़ेंगे तो हो गया 27। 27 में से हमने उत्तर के दशम स्थान पर लिखा 7 और 2 को हमने फिर से हाथ में रख लिया। अब थोड़ी कठिन बात आई, क्योंकि अब हम उत्तर के शतम के स्थान की तरफ बढ़ रहे हैं। उत्तर के शतम के स्थान को जानने के लिए हमें शतम, दशम और एकम, इस प्रकार ऊपर के तीन और नीचे के तीन, 6 अंकों का विचार करना पड़ेगा। और यहाँ भी गुणाकार में तिर्यक पद्धति और ऊर्ध्व पद्धति दोनों का उपयोग करना पड़ेगा। तिर्यक के लिए पहले हम निचली संख्या के 8 को ऊपरी संख्या में शतम के स्थान पर जो 5 है उससे गुणाकार करते हैं, तो 8 पंचे हुए 40, और जो हमारे हाथ में 2 बचे हुए थे उसे भी जोड़ दिया तो हो गए 42। अब ऊपरी संख्या में एकम स्थान पर जो 7 है उसे भी तिर्यक गुणाकार के लिए निचली संख्या के शतम स्थान अर्थात 3 से गुणा कर दिया, तो ये हुए 7 21, इसे हमने 42 में जोड़ दिया तो हमारा जोड़ निकला 63। अब दोनों संख्याओं का बीच का अंक बचता है जो दशम स्थान का अंक है, ऊपर में है 1 और नीचे है 2, इनका आपस में ऊर्ध्व गुणाकार कर दिया हमने तो हो गए 2, इसे भी हमने जोड़ दिया 63 में, तब हमारा कुल जोड़ हुआ 65। इसमें से 5 हमने लिख लिए उत्तर के शतम के स्थान पर और 6 को फिर हाथ में रख लिया। अब हमें सहस्रक का स्थान देखना है कि वहाँ कौन आने वाला है आंकड़ा। हमने एकम के स्थान के जो आंकड़े थे उनका सभी से तिर्यक गुणाकार कर दिया। अब चलते हैं दशम वाले स्थान पर। अब दशम का दशम से गुणाकार पहले ही हो चुका है, लेकिन दशम का शतम वाले से गुणाकार बचा है अभी भी, उसे हम पहले तिर्यक पद्धति से करेंगे। तो निचली संख्या के दशम स्थान के 2 और ऊपरी संख्या के शतम स्थान के 5, इनका गुणाकार हुआ 5 दुने 10, और ऊपरी संख्या के दशम स्थान का 1 और निचली संख्या के शतम स्थान का 3, इनका तिर्यक गुणाकार हुआ 3, तो 10 और 3 13, और हमने हाथ में रखे हुए थे 6, इसे भी जोड़ दिया तो हमारा जोड़ हुआ 19। इस 19 में से हम सहस्र के स्थान पर 9 लिखेंगे और 1 को हाथ में रख लेंगे। अब दशम के अंकों का काम भी पूरा हुआ, शतम के अंकों का काम अब भी बाकी है। ऊपर की संख्या में शतम स्थान पर 5 है और निचली संख्या में शतम स्थान पर है 3, इनका ऊर्ध्व गुणाकार हम करेंगे तो हो गए 5 3 15, और जो हमारे हाथ में 1 बचा हुआ था उसे भी मिला दिया तो जोड़ हो गया 16। इस प्रकार मित्रों हमारे लंबे गुणाकार का लंबा उत्तर हमने एक ही पंक्ति में लिख करके समाप्त कर दिया, और ये उत्तर हुआ 169576 अर्थात 169576। मित्रों यही विधि बड़े ही धीरज के साथ करते हुए हम चार अंकों से चार अंकों का गुणाकार, पांच अंकों से पांच अंकों का गुणाकार इस प्रकार भी करते चल सकते हैं। अब यदि तुम्हारे मन में ये प्रश्न हो कि ऊपर हमें एक बड़ी संख्या है पांच अंकों वाली, पर नीचे हमारे पास छोटी ही संख्या है तीन अंकों वाली, तो क्या होगा? तो कल्पना करो कि जो तीन अंकों वाली हमारे पास संख्या है उसके पीछे हमने दो शून्य और लगा दिए ताकि वो दिखने में लगे कि वो पांच अंकों वाली है। और जब हम इस शून्य को ऊर्ध्व या तिर्यक पद्धति से गुणाकार करते चलेंगे, उनका गुणाकार हो जाएगा शून्य, तो वो जोड़ने में भी या गुणाकार में भी उसकी कहीं कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार हम लंबे गुणाकार भी कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः हमें दो या तीन संख्याओं के गुणनफल से संतुष्टि हो जाती है, तो यह गुणाकार बहुत ही सरल तरीके से निकल सकता है। मित्रों, ये कुछ टिप्स मैंने दी, कुछ युक्तियां मैंने बताई। तुम यदि ऊर्ध्व तिर्यक पद्धति का अभ्यास करते रहो तो इतनी अच्छी सफलता मिलेगी कि तुम अपने आप पर ही झूम उठोगे। तो बस उस समय ये मत भूलना कि यह ज्ञान हमें अपनी वैदिक परंपरा से मिला है। तो बस करते रहो गणित, झूमते रहो, सुनते रहो मधुबन, मुस्कुराते रहो। नमस्कार।